ओम शांति। इस मार्ग में और मजबूत बनने के लिए अभी हम भाई साहब से ईश्वरीय नियम मर्यादाएं एवं श्रीमद् के बारे में क्लैरिटी से सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे।
ओम शांति। कितना सुंदर संगठन है पांडवों का, माताओं को क्रॉस कर लिया। माताओं का संगठन था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। आज हमारे कुमारों का कितना बड़ा ग्रुप है, और जहाँ इतने कुमार हों वहाँ क्या नहीं हो सकता है। लेकिन मन का बंधन नहीं चाहिए। मन का बंधन है तो पिंजड़े की मैना बन जाते, और मन से स्वतंत्र हैं तो उड़ते हैं। बाबा जहाँ भेजो, जो कराओ, जैसे कराओ। और हमारे पांडव दल ब्रह्मा बाबा के हमजिंस प्रवृत्ति में रहते हुए चैलेंज देने वाले, प्रवृत्ति नहीं है लेकिन क्या है, परवृत्ति, वृत्ति से परे। तो बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भले घर गृहस्थ में बना रखा है लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना के रखा है कि देखो हम सब साथ रह करके भी कमल फूल के समान रहते हैं। कीचड़ तो नहीं आता है ना किसी के ऊपर, हैं सभी कमल फूल। कीचड़ पानी के बीच में है लेकिन एकदम न्यारा प्यारा खिला हुआ, सबको संभालते भी सबसे अलग। सेवाएं कितनी भी हैं, कार्य कितने भी हैं, लेकिन कोई भी कार्य में बंधे हुए नहीं, फंसे हुए नहीं। अगर सचमुच बाबा की मुरली को कोई ध्यान से पढ़ता है तो सब श्रीमत मुरली के अंदर मिलती है। कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने न सिखाई हो, न बताई हो। प्रवृत्ति में चलने की, कार्य व्यवहार में आने की, संबंध निभाने की, शादी ब्याह में जाने की, खाने की, पीने की, कौन सी मर्यादा की श्रीमत बाबा ने नहीं दी। पूछने वाले पूछ लगाते हैं, बाबा के आगे साकार में कोई जाता था और बाबा से कहता था, बाबा मैं कुमार हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत बंधन डालते हैं, मैं क्या कहूँ, मुझे शादी करनी पड़ेगी, मैं करूँ या ना करूँ। बाबा तो बच्चे भले करो भले करो, बाबा मुझे शादी में जाना पड़ता है, संबंध निभाने पड़ते हैं, कलर ड्रेस पहननी पड़ती है, भले पहनो भले पहनो भले पहनो, सिनेमा में जाना पड़ता है, पति बहुत जबरदस्ती करता है, टिकट लेके आ जाता है, मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। अरे बच्चे जाओ ना, क्या हो गया, जाओ जब। एक दिन की मुरली में बाबा ने कहा, एक बीड़ी पीने वाला आया, बाबा बीड़ी के बिना पेट साफ नहीं होता, बीड़ी पीनी पड़ती, मैं क्या करूं। बोले बच्चे भले पियो भले। वो जानता है कि अगर मैंने श्रीमत दे दी और इसने फिर भूल की तो इस पर डबल पाप चढ़ेगा। श्रीमत तो मैंने दी है, देवता तुमको बनना है तो ये नियम पालन करने हैं, इनमें दृढ़ता रखनी है। दृढ़ता होगी तो बाबा की मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे कमजोर संकल्प हैं और फिर बाबा कहेगा और तुमने नहीं कर पाया तो डबल अवज्ञा हो जाएगी। एक बार तो आज्ञा की अवज्ञा की कर ही रहे हो, और दूसरी बार बाबा से पूछने के बाद भी अगर कर ली तो बाबा तो रहन दे लेना, क्या कहेगा। कभी भी ऐसी श्रीमत नहीं देगा जो बच्चा न कर सके। लेकिन कभी ऐसे बच्चे आते हैं, मान लो आज एक बड़ा बिजनेसमैन आए और वो बाबा से पूछे, बाबा मुझे चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए बाहर। बाबा उसको आंख दिखाएगा, तुम क्यों पिएगा, बिल्कुल नहीं पीना। कोई अगर नौकरी करने वाला कोई ऑफिसर आता है, ऑफिस की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, नौकरी पर है, किसी के अंडर काम करता है, और वो पूछता है, बाबा पीनी पड़ती, मैं क्या कहूँ। बाबा भले पी लो बच्चे, योग कोई हर्जा नहीं है। एक दिन की मुरली में आता है बिल्कुल नहीं पीना, दूसरे दिन की मुरली में आता भले पी लो। एक दिन की मुरली में आता है कहीं नहीं जाना, सिनेमा में जाना है, मानासिन की माँ पाप की माँ है, और दूसरे दिन आता है बच्चे चले गए तो क्या हट जाए, भले चले जाओ, देखने से कोई हट जा थोड़ी है। तो बाबा के सामने जैसे बच्चे वैसी श्रीमत, तो इसलिए बहुत यथार्थ रीति से श्रीमत को समझना, नियम मर्यादाओं को समझ के चलना। इसलिए बाबा कभी भी कोई हट नहीं सिखाता है? कोई एकदम जबरदस्ती किसी से नहीं कराना चाहता, सहज योगी जीवन है। जिस तरह से देव पद प्राप्त करने के लिए आप युक्ति से चल सकते हो, सहज रीति से, उतना चलने का संकल्प पक्का करो। अपने कमजोर संकल्प आपके मार्ग में बाधा न बने, उन कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। बाकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई परिस्थिति ऐसी है, तो बाबा ये नहीं कहता है आपस में झगड़ा कर लो, आपस में टकराव कर लो, मैं नहीं खाता, मैं नहीं जाता, तो बाबा क्या कहेगा? ब्रह्मा कुमारियां उस समय बदनाम होने लगती कि देखो ब्रह्मा कुमारियां यही सिखाती हैं क्या? जाज कुमार है, उसके घर में माँ बाप के साथ रहा है 10 साल 15 साल, उसने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और आज वो बाबा का बच्चा बन के कल मम्मी पापा कहे तेरे हाथ का मैं नहीं खाऊं, क्या करेगी मम्मी? कहीं कहाँ गया ये, क्या हो गया इसको, मैंने इतना इसको बड़ा किया, आज कहता मैं नहीं खाऊंगा, झगड़ा करता। ये ब्रह्मा कुमारियां यही सिखाती है, माँ के हाथ का भी नहीं खाओ। लेकिन कम से कम अगर वो ज्ञान और योग में पक्का है तो माँ को समझा सकता है, उसका प्यार है, उसका मोह है, वो समझ जाएगी। वो बहुत प्यार से बोलो माता जी मैं अभी थोड़े समय से ये नियम पालन करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर अगर आपको कहे आपको शुगर की बीमारी है, आपको चीनी की चीज नहीं खानी, आपको चीनी नहीं लेनी है चाय में, तो आप मना तो करोगे ना कि नहीं मना करोगे? क्या करूँ मम्मी है, उसके हाथ का तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा? तुम खाओ जा करके, जो करना है करो। इसलिए अगर कोई नियम बताए जाते हैं तो उनको चलने के लिए बहुत युक्ति युक्त चलो, युक्ति से मुक्ति पालो, समझाओ, प्यार करो, स्नेह दो, और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे किनारा करो। बाबा ऐसे तो नहीं कहता एकदम कह के और टकराव की स्थिति पैदा कर दो, टकराव में आना भी तो श्रीमत की अवज्ञा है ना। इसलिए घरों में झगड़े न हो उसके लिए आप कोई प्लानिंग करो अपने आप में, नियमों में दृढ़ता लाने के लिए, पक्का होने के लिए कुछ संकल्प लो, और अपने घर में योग का वातावरण बनाओ, ताकि कोई भी साधारणता उस योग घर के वातावरण में प्रवेश न कर पाए। अगर नियम और मर्यादाओं में मजबूत रहना है तो कुछ तो संकल्प, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। आज घर में टीवी चल रही है, आप वही पिक्चर देख रहे हो, बार बार सीरियल घुमा रहे हो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? परिवार वाले से कहते तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ब्रह्मचारी हैं, और ये देखो देखते क्या है, करते क्या है। तो नियम माना नियम, नियम मर्यादाएं और श्रीमत। वैसे नियम तो आप सब जानते हो, जिस दिन से योग सीखना शुरू किया 4 नियमों का बंधन बताया गया। राजयोगी के लिए 4 नियम पिल्लर हैं, और उन नियमों की बहुत बड़ी व्याख्या है, विस्तार उसका बहुत है। उसको अमृत वेले से रात तक बाबा ने नियमों के दिनचर्या में हमको बांधा है। पहला नियम है मन वचन कर्म की पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना। पहले नियम में अगर कोई फेल है तो दूसरे नियम को फॉलो करने में कोई फायदा नहीं है। अगर इसी व्रत को हम पक्का ले लेते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी वृत्ति को शुद्ध रखूंगा, मन को पवित्र रखूंगा, और कर्म में तो कभी भी इन विकारों के अधीन नहीं होगा, तो प्रतिज्ञा करेंगे तो इस व्रत के आधार से मन शुद्ध होगा, मन मनाभव होना सहज होगा। ये पक्का और पहला ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोगी का नियम है। इसके लिए तो बाबा यहाँ तक कहते हैं कुछ भी हो जाए, प्राण भी जाए, लेकिन वचन न जाए, ये संकल्प नहीं टूटना चाहिए। नहीं तो कुमार अगर इस व्रत का पालन करते हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन में आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सीधा पहले ये कहता है भाई तुमने शादी क्यों नहीं किया है, तुमको इसीलिए डिप्रेशन है, जाओ शादी कर लो ठीक हो जाओगे। किसी भी डॉक्टर के पास कुमार अगर डिप्रेशन वाला चला जाएगा, उसको फट से डॉक्टर कहेगा इसको इसलिए डिप्रेशन है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाए। बदनामी हुई या सेवा हुई, इसलिए अपने आप को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करो। ये ऊर्जा है, ये शक्ति है, इस शक्ति को सही दिशा में लगाओ। रचना करने की शक्ति को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये व्यर्थ चली जाएगी नहीं तो, अगर हमने इसको सही दिशा नहीं दी। बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं, एनर्जी जमा है, तो इस एनर्जी को कम से कम सेवा में लगाओ। रचना का कार्य है भगवान का, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का काम है, इस एनर्जी को योग के द्वारा प्रयोग में ले आओ, ताकि आपके शरीर को नुकसान न पहुंचाए, मन को डिप्रेशन में न ले जाए। कई डिप्रेशन में इसलिए चले जाते क्योंकि बहुत जबरदस्ती अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, हट से कंट्रोल करते हैं। इसलिए अपने विचारों को पहले से अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प दो, अच्छे विचार दो, अरे देवता बनना है। आज कुछ दिन पहले बाबा की इतनी अच्छी पवित्रता पर मुरली चली, अव्यक्त बाबा की, सुनी है सब कुमारों ने? सुनी है, मुरली तो सुनते हो ना सब, कौन कौन नहीं सुनता है? नहीं सुनने वाला हाथ उठाओ, सब सुनते हो सच? ये कभी कभी, कभी कभी वाले उठाओ, ये तो छोटे हैं, कोई बात नहीं। और हुँ? और सब सुनते हैं? है अभी उठा रहे हैं धीरे धीरे। भाई लोग सब सुनते हो मुरली? जो पक्के हैं वही आए हैं ना क्लास में, तो उनको ही छुट्टी मिली भट्टी में आने की। तो अगर बाबा की मुरली सुनते हो तो मैं समझता हूँ इस पवित्रता की वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, वो सब जानते हो। बाबा इसी पर रोज अंडरलाइन कराता है क्योंकि वो आया ही है पतित को पावन बनाने, और कोई काम उसका नहीं, एक ही काम है, और उसका कहता कॉन्ट्रैक्ट मेरा ही है, कोई दूसरा नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्टर मैं हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को हाथ नहीं लगाना, बना के ले जाऊंगा, नहीं ऐसे बनोगे तो धर्मराजपुरी में ले जाऊंगा, बनाऊंगा जरूर। तो इसलिए इस व्रत को पालन करने के लिए आंतरिक ऊर्जा को सेवा में लगाओ, मन को बिजी करो चिंतन में, अच्छे लेख लिखो, अच्छे पढ़ाई करो, कविताएं लिखो, क्रिएटिविटी करो, ये रचना की शक्ति है ना, इसको ऐसे आलसी नहीं बनना, सुस्त नहीं बनना। अधिकतर काम विकार उनको ज्यादा परेशान करता है जो सेवा में अपनी हड्डियां नहीं लगाते, शरीर को थकाते नहीं है, कर्म इंद्रियों को शांत रखना चाहे, आलसी हैं, सुस्त हैं, सोए रहते हैं अमृत वेले, या उसके बाद सो जाते हैं घंटों में, फिर टाइम पास कर लेते हैं। इसलिए अगर सचमुच ब्रह्मचर्य व्रत का सही रूप में पालन करना है तो इस एनर्जी को, ऊर्जा को अच्छे काम में, लिखने में, पढ़ने में, चिंतन करने में, ज्ञान सुनाने में बिजी कर दो, सफल करो इसको, व्यर्थ न जाए। तो ये ब्रह्मचर्य बहुत सहज है, ये पहला नियम अगर जीवन में धारण हो गया तो दूसरे सब इसके पीछे पीछे आ जाएंगे। अपने आप काम क्रोध के साथ और सब विकार धीरे धीरे छूट जाएंगे, लेकिन पहले इस व्रत को पक्की रीति से दृढ़ता के साथ, कुछ भी हो जाए मरेंगे मिटेंगे, इसी के लिए बाबा कहता है इतनी बदनामी हुई, संस्था की बदनामी हुई, टकराव हुए, झगड़े हुए, कोर्ट कचहरियां हुई, इसी के लिए सब संस्था के ऊपर आया। इसमें लूज नहीं होना, इसमें अपने को कमजोर नहीं करना, इसको मजबूत करो पिल्लर को, ये पहला पिल्लर है। दूसरा इसको सपोर्टेड है शुद्ध अन्न, क्योंकि अन्न का पहला असर मन पर पड़ता है। आज हम जानते हैं सारा दूषित विषैला अन्न मिल रहा है हमको, अब उसके लिए कितने हम प्रयास करें, लेकिन सबको तो आबादी इतनी बढ़ रही है, उसको इतना शुद्ध अन्न जमीन से निकाल के नहीं खिलाया जा सकता। भले ऑर्गेनिक की हम प्रयास कर रहे हैं, योगी खेती करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो देवता ही घराने के लिए ठीक है, सतयुग के लिए ठीक है, वो तो 9 लाख लोग हैं, उनको तो वही मिलने वाला है, लेकिन आज इतनी बड़ी करोड़ों की, अरबों की आबादी को हम पौष्टिक और शुद्ध अन्न खिलाएंगे तो संभव तो नहीं है, लेकिन प्रयास है। लेकिन उस अन्न में जो भी आपके पास आता है उसको बनाने वाले के विचार और उसको खाने की विधि, अगर सचमुच हमको अपने मन को ठीक रखना है तो योगी के हाथ का ही बनाना हुआ खाना होगा। योग युक्त होकर के बनाए, बहुत शुद्ध स्नान पानी करके स्वच्छ होकर के भोग की रीति से भोजन बनाए, भोग लगाए फिर खाओ तो उस अन्न का मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, मन सहज एकाग्र हो जाएगा। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का नियम है। बहाने तो बहुत हैं, अगर कोई दृढ़ता का संकल्प लेता है तो सब रास्ते उसके लिए निकल आते हैं, मदद मिल जाती है। कभी कोई ऐसी बात होती है, कभी अचानक कुछ हो भी जाता है, बीमारी हो गई, कोई कारण बन गया, तो अगर हमने किसी को साथ मदद दी है तो उसको भी हम सहयोगी बना सकते हैं। इसलिए लक्ष्य रखो, पक्का रहो। बाकी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति है तो कहीं खाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पर डिसर्विस कर दें, लेकिन शुद्ध हो, शाकाहारी हो, जहां तक हो सके पवित्र कन्या या ऐसी बहन के हाथ का बना हुआ हो जो आपके मन को खराब न करे। ध्यान रखो तो सब साधन मिलते हैं, सब युक्तियां होती हैं। और कोई बहुत प्रॉब्लम है तो बाबा इसके लिए कहता है, बच्चे ज्यादा टकराव की स्थिति पैदा नहीं करो। ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन सबके लिए नहीं है। और तीसरा है रोज सत्संग। आज के लिए जो मोबाइल और इंटरनेट की माया आई है उसने हमारे सत्संगों में बहुत बड़ा विघ्न डाला है। वो समझते हैं हम मुरली तो पढ़ लेते हैं ना, मोबाइल में पढ़ लिया, हमारे पीस ऑफ माइंड में आ रही है, मधुबन की मुरली आ रही है, सेंटर पर तो जाओ तो बहुत सारे संस्कार स्वभाव है, बहुत सारी बातें हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है, हजार बहाने आजकल ब्राह्मण करने लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब तक संग अच्छा नहीं मिलेगा, संगठन नहीं मिलेगा, तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। अच्छे वातावरण में आपको आना पड़ेगा, केवल घर में बैठ करके मुरली स्टडी करने से उन्नति नहीं होगी। पढ़ो जरूर, घर में अगर साधन है सुनो पढ़ो ठीक है, लेकिन बाबा के घर की हाजिरी जरूरी है, वहां के वातावरण में जाना जरूरी है, जहां दिन रात यज्ञ चल रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, योग की अखंड धुनी लगी हुई है, उस स्थान पर एक बार भी नहीं आओगे तो शक्ति नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो बाबा के परिवार की भासना नहीं आएगी। वो सतयुग के अंदर एक घराने के अंदर आ जाओ, रॉयल फैमिली में आ जाओ, उसे दूर हो जाओगे, वंचित हो जाओ। इसलिए बाबा ने नियम बनाया है सत्संग। वैसे तो गॉड इज ट्रुथ, भगवान का संग ही सत्य है, लेकिन मान लो उसके संग रहने में मेहनत है तो कम से कम परिवार जो सत्य मिला है, बाबा की पढ़ाई जो है उसके सत्य संग में रहो, तो ये हमारा तीसरा नियम है। चौथा नियम तो हम सब जानते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं, लेकिन कभी कभी वो लक्षण कभी दिखाई कम देते हैं, वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी, वो चलने का तरीका, वो बोलने का तरीका, वो खान पान का तरीका, वो सफाई, वो स्वच्छता, वो देवता ही लक्षण। कम से कम जब तक दिव्य गुण जीवन में उतरे तब तक ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस लाइफ के अंदर तो दिखाई दे कितना रॉयल है, कहीं इसकी आंख नहीं डूबती, कोई कैसा भी कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी अच्छी चीज हो उसके ऊपर आकर्षित नहीं होता। रॉयल्टी क्या है? आज राजा ही नहीं है लेकिन राजा ही घराने हैं, और राजा ही घराने में आप किसी भी बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को आप कोई चीज दो लेगा? हाथ नहीं लगाएगा, देखेगा ही नहीं, खाना तो दूर है, छीनेगा नहीं, और रॉयल है, उसके संस्कार रॉयल है। हम लोग अगर खाना मिल रहा है इधर से लाइन, अरे टोली बांटने लोगो, भाई लाइन में आओ, क्या जाता है 5 मिनट में, संस्कार क्यों इतना खराब कर रहे हो, जल्दी 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 छीना झपट, जैसे मिलेगी नहीं और जाना कहाँ, यहां से जाएंगे वहां पर बातें करेंगे, जल्दी भी नहीं है कोई, लेकिन एक संस्कार बन गए हैं झपटने के इधर से उधर, वो रॉयल्टी नहीं लगती है। बहुत रॉयल संस्कार, क्या जाता है 5 मिनट 10 मिनट में, क्यों भगदड़ कर रहे हो, योग किया इतना अच्छा अनुभव किया और 5 मिनट टोली मिलना शुरू हुई, इधर से घुस रहे इधर से घुस रहे इधर से घुस रहे, कंट्रोल करना ही मुश्किल, एक दूसरे को धक्का दे रहे, अरे कोई बूढ़ा है बेचारा गिर जाएगा मर जाएगा पाप चढ़ जाएगा, ध्यान तो रखो, तो शांति से, धैर्यता से, लाइन से, गंभीरता से, अरे हम देवता बनने वाले हैं। अगर मान लो खत्म भी हो गए, मिलेगी तो जरूर, नहीं भी मिले तो क्या है, भूखे थोड़ी रह जाएंगे। लेकिन वो संस्कारों में रॉयल्टी, इधर खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, खड़े हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या कोई बात कर रहा है तो इसे सुन रहे हैं क्या बोलता है, ये रॉयल्टी है क्या? अच्छा कोई बात कर रहा है, हम कट कर रहे हैं, हम बड़े समझदार हैं, ये कोई नियम है? बाबा कहते बच्चे राय संस्कार दैवी गुण है, कभी भी कोई बातें हो रही हैं आपने सुनो कान लगा करके, न उसके बीच में कट करो, नहीं तो अपनी बुद्धि का अहम दिखाई देता है, समझ दिखाई देती है, बड़ा समझदार है। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, बाबा ने क्या सिखाया है, बच्चे तुरंत कट नहीं करो, तुरंत कट करोगे टकराव पैदा हो जाएगा। उस समय जो बात आपको दे रहा है भले गलत ही दे रहा है, वो अपने को बड़ा समझदार समझता है, वो समझता है मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल 100% राइट है, और उस राइट बात को आपने तुरंत कट कर दिया तो उसको ये लगेगा ये मेरे अहम को इसने चोट पहुंचाई, मैं भी देखूंगा इसकी बात को भी काटूंगा मैं। इसलिए बाबा ने सिखाया बच्चे पहले धरणी बनाओ, कोई बात देनी है तो पहले धरणी बनाओ। मैं तो कभी कभी मोडी टाइप करता हूं, बड़ी रमणीक हंसता हूं, इतनी बाबा इतना चोटी पर चढ़ाता है, इतनी महिमा करता है, इतनी महिमा करता है, ये हो ये हो ये हो, और बात कितनी बात छोटी सी कहता है, ये ठीक नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक शिक्षा देने के लिए उसको इतनी देर हल चलाना पड़ता हमारे ऊपर, हम बीज ऐसे फेंकना चाहते हैं फल निकल आएगा, ऐसे बीज फेंकोगे तो चिड़िया ही खा जाएंगी, इधर उधर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर कोई शिक्षा देनी है, कोई बात कहनी है, तो कम से कम उसके समय को, स्थिति को, उसकी अवस्था को देखो तो पहले। कह दिया नहीं मानता है, ये सुधरेगा ही नहीं, और शराब दे दिया। देवी गुण ये हैं, बहुत रायल संस्कारों से, सम्मानजनक बोल से, कम बोल से, अच्छे से अच्छा काम करा लो, रिस्पेक्ट देना, प्यार से बोलना, किसी की बात को कट नहीं करना, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना, उसकी महिमा करना, ये सब रॉयल्टी है। अब इस रॉयल्टी पर अगर मैं क्लास कराऊं तो 2 घंटा करा दूंगा, लेकिन अधिक नहीं। आप सब समझदार हो, इस पर विचार करना कि बाबा मुझे देवता बना रहा है, देवता माना एकदम दाता, संपन्न, भरपूर, कोई कमी नहीं उसके पास, सब बातें जो कुछ है, बाबा मुझे आपने बहुत कुछ दिया, मुझे इन सबको देना है, मान की इच्छा नहीं है, कोई इज्जत दे वो उसकी भी इच्छा नहीं है, बाबा आपने मुझे बहुत मान दिया है, इतनी ऊंची सीट पर बिठाया है, इतना अपने दिल तख्त पर बिठाया है, मुझे कोई से कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी उस दिन रॉयल्टी आ जाएगी। कोई कामना न रखो, कोई से कामना नहीं रखो, ये मुझे क्या देंगे, व्यक्ति मुझे क्या देगा, मुझे आसन दे देगा, मुझे माला पहना देगा, मेरे पे पगड़ी रख देगा, यही मेरा सम्मान है क्या? मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आज तक भी कभी भी कोई गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एक दिन दादी मेरे कहती है तेरे में देहमान बहुत है, तो दादी अभी देहमान कहाँ छूटा है, कहती ज्ञान नहीं सुनाओ इधर आओ। ना क्यों दादी, तुम सिल्वर जुबली में क्यों नहीं बैठा? हमने दादी मुझे ये सब ये दिखावा लगता है, ऐसा नहीं बोला जाता है। सिखाया क्या जरूरत है इन सब बातों की हम लोगों को, हमको बाबा ने इतना दिया है। ठीक है संगठन है, कहीं बैठना पड़ता है, कोई माला पहना देता है, टोपी पहना देता है, ठीक है मुझे नहीं चाहिए सब। क्या इसमें मिलता है? अच्छा देखने वालों को लगता है कितना इनका सम्मान हो रहा है, और यहां सिर में दर्द हो रहा, टोपी पहना दिया यहां, माला पहना दिया, गले में दर्द होने लगता है वो वजन से ही, और गीली होती है तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। मेरे को तो सचमुच आर्टिफिशियल बातें लगती, पता नहीं क्यों किसी को बहुत खींचती हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे को स्टेज पर नहीं बिठाया, मेरे को पूछा नहीं, सबको पूछते हैं, हम भी तो पुराने हैं, हमारी भी तो कदर होनी चाहिए। ये राय संस्कार नहीं है, मेरे विचार से नहीं है, आप लोग क्या समझते हो? अरे बाबा इतना दे रहा है, दिल तख्त पर बिठाया है, सम्मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, रॉयल्टी सिखाई है, इन बातों के पीछे क्यों जाए हम? ठीक है, आज पानी पूछा, कल नहीं पूछे, भले नहीं पूछे, हमको पानी पिलाने वाला बाबा बैठा है। कभी भी नहीं को इसकी खातरी होती, मेरी नहीं होती, इसको पूछा जाता, मेरे को नहीं पूछा जाता। यहां पर ही हमारी जो दूरियां बढ़ती हैं आपस की, परिवार की, उसका एक कारण यही है, हम देखा देखी बहुत करते हैं, जो हमारे राया संस्कारों में नहीं है। नियम और मर्यादा ये कहती है बहुत रॉयल्टी से संतुष्ट मणि बनकर के रहो। योगी वो है जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहता है। बाबा आपने सब इच्छाएं मुझे पूरी कर दी, मुझे कोई तमन्ना नहीं। बाबा जी कहता है बच्चे जिस दिन तुम्हारी ये तमन्नाएं और कामनाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन तुम राजा बन जाओगे। संसार में उसी के पीछे लोग भटक रहे हैं और बाबा ने हमारे को सब दे दिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, किसी के आगे ऐसे हाथ करने की क्या जरूरत, हम तो बाबा के बच्चे देने वाले हैं, देने जाते हैं लेने नहीं जाते हैं, और इसलिए बड़े शान से रहते हैं। कुछ चाहिए नहीं मेरे को, क्या हमको दोगे, और दोगे भी तो अपना भाग्य बनाओगे, भगवान की भंडारी में जाएगा, मुझे नहीं चाहिए आपका, मैं आपका 5 पैसा यूज करने वाला नहीं हूं। ठीक है आपने सम्मान से दिया, मैं रिस्पेक्ट देता हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए पर्सनल, मैं क्या करूंगा। बाबा ने तृप्त किया है, भरपूर किया है, संस्कारों में भी भरपूरता भर दी है, इसलिए सब चीजें बाबा ने, साधन तो तुम्हें को मिलेंगे ही ना, साधना करो साधन आएंगे, लेकिन साधनों के अधीन कभी नहीं होना। तो ये हमारे जो दैवी गुण हैं, ये हमारी मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करो। आज अगर सीता जी को थोड़ी सी परखने की शक्ति होती तो मैं समझता हूं ये 14 साल वनवास और खास करके ये इतना बड़ा युद्ध नहीं से होता। आप देखो कहानी कैसी बनाई है, संगम की कहानियां सब, ये तो सब आर्टिफिशियल लिखत है, लेकिन कहानी कितनी रमणीक और कितनी अर्थपूर्ण है। कहते हैं सीता जी जब चित्रकूट में वो पंचवटी में रहती रही थी तो एक सोनी हिरण सामने दिखाई दिया और सोनी हिरण पर वो आकर्षित हो गई। राम को जिद करने लगी ये सोनी हिरण हमको चाहिए। राम उनको समझा रहा है सोनी हिरण सीता नहीं होता, ये आर्टिफिशियल है, कोई माया है, कोई छल है, आप समझो। नहीं मुझे तो चाहिए, जिद किया, पहले परखा नहीं फिर जिद किया, फिर राम को अच्छा ठीक है खुश करने के लिए जाना पड़ा। जब पीछे पीछे भागा तो थोड़ी दूर जाकर के उसने आवाज निकाल दी, लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण बचाओ, उसको तो लक्ष्मण को भी वहां से हटाना था। अब सीता उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाई कि ये राम नहीं बोल रहा है, ये वही माया बोल रही है। फिर लक्ष्मण के पीछे लगे, तुम जाओ भी राम के पर कुछ आ गया आपदा, उनको भी निकाल दिया वहां से भगाया। लेकिन लक्ष्मण समझ रहा था ये सब धोखा है, उसने कहा सीते अपनी सुरक्षा के लिए मैं आपके आगे एक रेखा डाल देता हूं, लक्ष्मण रेखा। कहते मन को लक्ष्य देना यही लक्ष्मण रेखा। उसने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा तुम इसमें से बिल्कुल निकलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी यही सेफ्टी है। अब रावण आया साधु भेष में, साधु बाबा बन करके, कितने साधु बाबा घूम रहे हैं है? और सीताएं परख नहीं पाती हैं और फटाफट भिक्षा देने के बहाने उसको उठा करके ले गया, ऐसे दे रही थी तो उसको आग निकल रही थी उसमें से, और जब देखा कि इसे नहीं होगा तो कहा एक थोड़ा सा बाहर आकर के दोगे तो भिक्षा लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। तो सीता सोची क्या होगा, इस लक्ष्मण ने क्या रेखा खींची होगी, थोड़ा सा निकाला उठा के लेके गया शोक वाटिका। बाबा ये जो हमारे लिए रेखाएं खींची है ना, ये मर्यादा की रेखाएं, ये नियमों की रेखाएं, ये मन को लक्ष्य, लक्ष्य मन, इस रेखा का उल्लंघन अगर किया तो शोक वाटिका के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, दुख ही दुख है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे परखने की शक्ति को बढ़ाओ, माया के छल हैं, माया के रूप हैं, परख करके चलो और जिद्द सिद्ध नहीं करो। अगर कोई डायरेक्शन मिलता है, कोई श्रीमत मिलती है, कोई बड़े कहते हैं, तो हाँ जी कह करके अपने को मोल्ड कर लो। मैं तो ठीक हूँ, मेरे पर अनुमान लगाते हैं, ये ऐसे ही शक करते रहते हैं। शक की बीमारी इतनी खराब है, जहाँ शक की बीमारी घुस गई उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर यहाँ मैं दे रहा हूँ। पति पत्नी के संबंध में अगर शक पैदा हो गया तो गए काम से, घर फिट गया। ऐसी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक दूसरे से नफरत हो जाती है। इस पत्नी का इसके साथ संबंध है, इस पति का इनके साथ संबंध है, बस अनुमान लगाया। चलो है भी मान लो, हो भी, रियल भी हो, लेकिन क्या किसी के पार्ट को आप चेंज कर सकते हो? केवल अपने को दुखी कर लो, कर सकते हो तो करके देख लो। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने मन को भारी क्यों करते हो? जो करेगा वो पाएगा, जाता है जाने दो। इसमें बहुत अच्छी आंतरिक स्थिति की धारणा चाहिए। शक नहीं करो पहली बात तो, अनुमान नहीं लगाओ। कई बार अनुमान की बीमारी ऐसी होती जो कहते उसकी दवाई तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, भगवान के पास भी नहीं। पति पत्नी के संबंधों में इतना बिखराव आ जाता, इतनी दूरियां बढ़ जाती, वो उसके पर सोचती रहती गलत, उसके पर गलत सोचता रहता। एक प्रैक्टिकल की घटना माताओं के क्लास में सुनाई थी, मैं सुनाता हूँ, रिपीट करता हूँ। एक युगल बहुत अच्छा ज्ञान में निकला, बहुत अनन्य भाई, उसका बहुत बड़ी पोस्ट पर था और पैसे से सहयोगी था पूरा ही, लेकिन वो स्थूल सेवाओं में मदद नहीं कर पाता था। और पत्नी सारा दिन सेंटर पर सेवाएं करना, कोर्स कराना, गीता पाठशालाएं संभालना, जाना क्लास कराना, बहुत अच्छी, चेहरे से भी, रूप रंग से भी, उमंग उत्साह से भी बहुत रायल माता थी। घर में गीता पाठशाला खोली, करीब 25-30 स्टूडेंट थे। मैं गया, क्लास करा के आया, बड़ी खुशी हुई। हमने कहा क्या आदर्श परिवार है, घर स्वर्ग लगा पड़ा है। एक साल के बाद दोबारा, दो एक डेढ़ साल के बाद मेरा जाना हुआ। माता जी का चेहरा काला, खुशी नहीं, उमंग उत्साह नहीं। तो मैंने उस भाई से पूछा, भाई कुछ हुआ है क्या, इस बीमारी है क्या, माता जी को कुछ हो गई? बोला बीमारी तो इतनी हुई, इसकी तो कोई दवाई नहीं है, कुछ तो हुआ होगा, बताओ तो। कहता इसी से पूछो क्या हुआ, फिर वो क्या बताएगी, उसकी तो खुशी गायब थी। तो भाई कहता है कि मैं पिछले साल रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद मैंने सोचा मैं भी घर में रेस करूं, ये इतने आगे बढ़ गई है, मैं भी कुछ करूं। तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास साधन थे, समझ थी, लोगों से संपर्क बड़े अच्छे थे। तो बहन जी को मैंने बोला, बहन जी इस गांव में चलेंगे हम सेवा करने, इस गांव में हम चलेंगे, गाड़ी हमारी है, हम चलाते हैं। बहने आई, बैठ गई गाड़ी में, और नेचुरल है जब थक मत के 2-4 घंटा लेट आगे पीछे आएंगे तो बहने कहेंगी खा लो यहीं पर, खाना भी खा लो। तो कभी कभी बहनों ने हमको खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरे साथ गाड़ी में आना जाना शुरू कर दिया। और ये माता जी देख देख करके बस जलने लगी अंदर अंदर कि इसका इनके साथ कुछ कनेक्शन तो नहीं हो गया है, ये इतना क्यों उठता बैठता है इनके साथ, क्यों बार बार इनकी गाड़ी में बहने जाती है। बस अंदर अंदर सोच बोले कुछ नहीं, और एकदम अनुमान शक घुस गया अंदर, और इतना घुस गया उस कीड़े को निकाले कौन। एकदम उदास, निराश, एकदम खुशी गुम, कोई सेवा का उमंग नहीं। उसको तो पता चल गया भाई को, इसको बस अंदर से जलन है, ये शक की बीमारी है। कहां वो पवित्र जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी जीवन जी रहे हैं पवित्र, और कहां एक बहने जो समर्पित है उनके साथ उसका अनुमान लग गया, शक कर लिया उसने। भाई ने कहा अब मैं इतना ब्रह्मा कुमारी में जाऊंगा ना सेवा करूंगा, तुम जा, तुमको जो करना है कर। हमने ये नहीं करना है, इतना नहीं सोचो। बड़ी मुश्किल से समझाया, दोनों को बिठाया, हमने कहा ये छोड़ो, जब आप लोग आपस में इतना समय से पवित्र जीवन जी रहे हो तो दूसरे के ऊपर शक क्यों करते हो। लेकिन बहुत मेहनत है इस बीमारी से मुक्त होना, इसलिए बच के रहना। घर के अंदर कभी भी किसी के पतन मान नहीं लगाओ। अगर कोई का पार्ट ही है, कोई गलेगा भी तो अपना भरेगा। परिवार की एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मेरे बहुत नजदीक का एक परिवार अपने संबंध में ही था, उसके दो बच्चे एक बच्ची माँ बाप, पांच जने परिवार में, बहुत अच्छे ज्ञानी, बहुत अच्छा परिवार था। माँ बाप की एक सूक्ष्म इच्छा होती है बच्चे जो हैं उनकी शादी जरूर कर दो, बच्ची को सेंटर में भेज देंगे लेकिन बच्चे को सोचेंगे घर में रहेगा, बहू आएगी, घर को संभालेगी, ये होगा। अंदर से ज्ञानी चाहे जितना हो, तो उस भाई ने एक बच्चे की शादी की और वो शादी होते ही बहू ऐसी आई जो उसको लेकर के शहर में चली गई, गांव छोड़ दिया। तो वो अपना बस गए जाके लखनऊ में, गांव में हमारे नजदीक रहते थे। दूसरा एक बेटा था, वो कॉलेज में जाता था, कॉलेज में जाते जाते उसका एक लड़की से प्यार हो गया। माँ बाप को पता चला कि वो हमारे घराने की नहीं है, वो बहुत थोड़ी कम नौकरी, कोई छोटी जाति की है, बस बच्चे पर प्रेशर आने लगा। बच्ची को तो सेंटर पर भेज दिया था, बच्चे पर प्रेशर आया, बहुत प्रेशर। माँ बाप कहें ऐसा नहीं, तुम्हारी शादी करनी तो मैं कर दूंगा, मेरी नाक कट जाएगी, मेरे कुल की बात है, मेरी ऐसी है, मेरी ऐसी है। रोए धोए, ज्ञान तो था लेकिन समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं करना। अब कहते हैं क्या करें, उसके बिना वो रह नहीं सका। बहुत जबरदस्ती की, एक दिन आया क्लास रूम में पंखे पर लटक गया, बेटा चला गया, सर ये छोड़ दिया। अब वो जो घटना घटी, एक तो चला गया पहले ही शादी करके, दूसरा चला गया शरीर से ही, और बहन चले गई सेंटर पर, बाप को आया अटैक, हार्ट अटैक, नहीं सहन कर पा उसे इनको, और मैं समझता हूं कुछ ही दिनों में वो शरीर छोड़ गया। नर्क कैसे बनता घर बताता हूं, स्वर्ग कैसे घर नर्क बनता। माता जी रो रो करके वो परेशान, पूरी गीता पाठशाला बंद हो गई। थोड़े दिन के बाद उनको पैरालिस हो गया। अब बेटी जो सेंटर पर रहती थी उसको घर जाना पड़ा। प्रैक्टिकल की कहानी है ये कोई हम बनाई कहानी नहीं सुना रहे हैं। अब वो सेंटर से गई, दुकान थी बाबूजी की, वो दुकान संभाले, घर संभाले, माँ को संभाले, क्या करे। और बेटा तो आता नहीं था, उसकी बहू इतनी तेरी वो आने नहीं देती थी, उसको एक बेटा हुआ वो आता था, वो बेचारा मदद करता था कि माँ बाप ऐसे हो गए, ऐसा परिवार, कभी कभी आ जा सोने के लिए। थोड़े दिन में माता जी भी चल बसी, गीता पाठशाला बंद। अब ये कुमारी के ऊपर सारा घर, सारी दुकान, सारा पास पड़ा हुआ है, सब तितर बितर हो गया। ये क्या है हिसाब किताब, ये है मोह। अरे भाई जिसका जो पार्ट है बजाने दो ना, ज्यादा क्यों इस कलयुग में तंग करते हो दूसरे को, समझ के चलो ना। परिवार के अंदर यही होने वाला है सब, किसको किस में बांधोगे आप, कब तक बांधोगे, प्रवृत्ति वाले बांध सकते हो, ठीक है समझ दो, रास्ता बताओ। बाबा भी कहता है तुम बच्चे को, बच्ची को टिवाटे पर खड़ा करो, तीन रास्ते जहां मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, और तीन रास्ते में बता दो ये रास्ता दुख का है, ये रास्ता सुख का है, ये मुक्ति का है, तीन रास्ते हैं संगम पर। अगर तुम सुख धाम में चलोगे तो तुम्हारे लिए ये रास्ता ज्ञान का, योग का, पढ़ाई का, समर्पित जीवन का है, खुला हुआ है। नहीं चल सकती बेटी के लिए तो ये कहेंगे, नहीं चल सकती है तो तेरा रास्ता शादी के लिए खुला हुआ है, दुनिया में जा सकती। अगर तुम शादी भी नहीं करना चाहती, समर्पित भी नहीं होना चाहते, तो तीसरा रास्ता नौकरी टोकरी कर लो, अपने पांव पर खड़ी हो जाओ, हम आपको सहयोग देंगे। एक रास्ता तो पकड़ना ही पड़ेगा किसी का, या दुख धाम का, या सुख धाम का, या मुक्ति धाम का। माँ बाप को ऐसे करके उसको निश्चिंत, अपने को निश्चिंत करना चाहिए, जिधर वो जाना चाहे। 18 साल की हो गई उसके बाद उसके पर कोई बंधन नहीं। बड़े युक्ति से समझाओ, प्यार से समझाओ, जो आपका फर्ज है वो पूरा करो। बाबा ये नहीं मना करता है कि अगर जवान कन्या आपके घर में बैठी उसकी शादी नहीं करो, करो। बच्चे हैं अगर अपने प्यार से करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उन पर जबरदस्ती नहीं है, जो तुमको करना है करो, हम आपको सहयोग देंगे लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। कलयुग के अंदर किसी को जबरदस्ती प्रेशर देकर के परिवार को बांधना, सारे घर को फिटाना है। इसलिए जो चलते जैसे चलते हैं अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं यही कहती हैं। अमृत वेले उठो, बाबा से शक्ति लो, सकास लो, बाबा से डायरेक्शन लो, बुद्धि को समर्पित करो, बाबा आपको टच करे, ये करो ये ना करो, अमृत वेला मिस नहीं करो, बाबा से बहुत अच्छी तरह से प्यार से रूढ़ियान करो, पवित्र मन से बाबा आपको जवाब देगा। अगर नहीं क्लियर होता है, बाबा के कमरे में जाओ, दो चिट्ठियां लिखो, बाबा के आगे रख दो, बाबा ये करूं या न करूं, आपको एक चिट्ठी उठा लो, भावना और निश्चय के आधार से जो बाबा की चिट्ठी निकले वो करो। मुरली में मिल जाता है डायरेक्शन, बड़ों से मिल जाता है, क्लासेज में मिल जाता है, राइट डायरेक्शन अगर लग रहा है, आपकी बुद्धि कहती है राइट है, कर लो, सोचो नहीं जाता। अमृत वेला और मुरली क्लास अगर ब्राह्मणों ने इन दो नियमों का भी पालन कर लिया तो खान पान का नियम है, भोग लगाने का नियम है, संग का नियम है, रात को सोते समय अपने आप को स्वच्छ करके चार्ट लिखने का नियम है, ये सब नियम और मर्यादाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं, इनको समझना है और समझ करके अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है। बस क्वेश्चन जहां पर आते हैं करूं या न करूं, उसका हल बाबा की मुरली के अंदर है। रोज की मुरली देखो, जिस दिन जो प्रश्न होगा उसका उत्तर उसी दिन की मुरली में होगा। ये बहुत जादूगर की मुरली है, मैं बोला ना मैं सौदागर तो हूं लेकिन जादूगर भी, मैं बच्चों से सौदा तो करता हूं लेकिन सौदा ऐसा कर लिया जो मेरे लिए कोई अपना बना लिया है, ऐसा सौदा किया है ना बाबा से, सौदागर ही हमारा हो गया। तो इसलिए बाबा से अच्छा सौदा करके दृढ़ता के साथ, चार स्लोगन देता हूं पक्का रखना, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, पूछो नहीं, संकल्प में पक्के रहो, दृढ़ संकल्प, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, कमजोर संकल्प है तो पूछते रहो सबसे, अलग अलग मते हैं, अलग अलग राय मिलेंगी। बाबा कहता है कुछ भी हो जाए मुझे अपने पवित्र जीवन के नियम को नहीं तोड़ना, मुझे खान पान को शुद्ध रखना है, मुझे अच्छा संग करना है, मुझे अमृत वेले उठना है, मुझे योग मुरली क्लास करना है, ये नियम है और इसमें हमको दृढ़ रहना, कुछ भी हो जाए सब ठीक हो जाए, बीमारी भी ठीक हो जाएगी, बहानेबाजी नहीं करो, आलस अलबेलापन और बहाना, ये तीन ही हमारे मार्ग में रुकावट है, इनको हटाओ और पक्का संकल्प को लो कि मरेंगे मिटेंगे लेकिन विजयी बन करके दिखाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती दूसरा स्लोगन है, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय, जहां निश्चय है वहां विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा, कोई भी कार्य के लिए बाबा से नहीं मांगो, हिम्मत आपकी मदद बाप की, हिम्मत का पहला कदम आप उठाओ, बाबा आपको हजार गुना मदद देने के लिए बंधा हुआ है, बाबा मदद करेगा तो हो जाएगा, मैं तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया है, बाबा कहता मैं ऐसे किसी को मदद नहीं करता, मांगने से तो मैं बिल्कुल नहीं करता, और करूंगा तो कितनी मिलेगी तुमको ना, आपके घर में कोई मांगने वाला आता है तो कितना देते हो, तिजोरी की चाबी तो नहीं देते होगे, दो रुपया चार रुपया अधिक तो रहम दिल होंगे, खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, प्रॉपर्टी का मालिक तो नहीं बना देंगे, और बाबा तो चाहता है मेरे बच्चे मालिक है, मांगते क्यों है। तो ध्यान रखना, हिम्मत का कदम मेरा तो मदद बाबा की, मांगना नहीं है। और चौथा स्लोगन है, अगर लगन पक्की है तो विघन ठहरते नहीं है, ये विघन है, ये विघन है, ये विघन, कहो नहीं, लगन को बढ़ाओ, विघन अपने आप भाग जाए। लगन माना जिगरी प्यार, बाबा से अच्छा जिगरी प्यार रखो, तो प्यार अगर है तो विघन भाग जाएंगे। जहां पर भी विघन आए ना, ये विघन आ रहा है, देखो भी लगन ठीक है, और लगन को बढ़ा दोगे तो विघन खत्म। तो ऐसे चार स्लोगन अगर साथ रखेंगे, और सच्चाई है तो सच्चाई माना अंदर बाहर एक है, तो सच्चे दिल पर भगवान राजी है, नियत साफ है तो मुराद हासिल है, ठीक है। तो ये से नियम मर्यादाएं श्रीमत, मैं समझता हूं समझ गए होंगे। देखो, दृष्टि के लिए, स्मृति के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, संबंध के लिए, संपर्क के लिए, व्यवहार के लिए, जिसको नहीं मालूम है पूछो, श्रीमत मालूम है सबको, दृष्टि के लिए क्या श्रीमत है बोलो, आत्मा देख करके बात करना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, दृष्टि को बहुत स्वच्छ सिविल बनाना, क्रिमिनल न बने, उसका ध्यान रखना, ठीक है। वृत्ति के लिए आप क्या है श्रीमत, वृत्तियों को अनासक्त रखना, उपराम रखना, निर्दोष रखना, वृत्तियां चंचल न हो उसके लिए व्रत लेना, ये श्रीमत है वृत्ति के लिए। स्मृति के लिए क्या नियम है, मर्यादा है, पास्ट की स्मृतियों को फुल स्टॉप लगाओ, बीत गई वो बीत गई, उसका चिंतन नहीं करो, फुल स्टॉप, क्वेश्चन नहीं, जो स्मृतियां पास्ट की गलत हैं, उनको फुल स्टॉप लगा दो। स्मृति में केक केक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक दूसरा न कोई, स्मृति के लिए श्रीमत। बोल के लिए श्रीमत क्या है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो सम्मानजनक है आवश्यक है वही बोलो, बाकी नहीं बोलो, चुप रहो, एक चुप सौ भला। संबंध के लिए क्या श्रीमत है, तोड़ निभाओ, सबके साथ संबंध निभाओ लेकिन पहले बुद्धि से तोड़ो, ये कोई मेरे नहीं है, तोड़ो फिर निभा लो। संबंध संपर्क में आओ तो अविनाशी संबंध मेरा एक बाबा से है, संपर्क सबके साथ रखना है लेकिन बहुत न्यारे और प्यारे होकर के रखना। तो बाबा ने क्या नहीं श्रीमत दी है, एक एक बात के लिए नियम मर्यादाएं सब मुरली में बताई हैं, और इसका अच्छा चिंतन करोगे तो आपका जीवन एक बिल्कुल परफेक्ट आदर्श बन जाएगा, कोई विघ्न कोई मेहनत इस मार्ग में है ही नहीं। लेकिन जो जरा भी उल्लंघन करता है उसको मेहनत ही दिखाई देती है, बहुत कठिन दिखाई देता है। सहज योगी जीवन मेहनत तब कराता है जब हम कहीं भी रास्ते को पलट देते हैं, उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए ट्रेन जैसे पटरी पर खड़ी होती है सीधे मंजिल पर जाती, ड्राइवर को ज्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं पड़ता। बाबा कहता बच्चे अमृत वेले उठो, पटरी पर खड़े हो जाओ श्रीमत की, मंजिल मिल जाएगी, भटकोगे नहीं, ठीक है। तो ये नियम मर्यादाएं और श्रीमत को दृढ़ता से पालन करके क्या करेंगे, विजयी पांडव, क्या कहो, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कुछ नहीं माया कर सकती है। ओके, ओम शांति। 1:30 बजने वाले
बीते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला से तू।